भगवद्गीता के 18वें अध्याय के 64वें श्लोक से शुरू करते हैं और 78वें श्लोक तक लेंगे हम। तो हम मैं एक श्लोक पहले बोलूंगा, फिर आप दोहरा सकते हैं इधर पीछे, फिर उसमें हम चर्चा करेंगे। इस तरह से हम एक श्लोक करके चर्चा करेंगे। तो 64वां जो श्लोक है जो भगवद्गीता का अंतिम विभाग है, वह भगवद्गीता का अंतिम विभाग स्पष्ट रूप से भगवान भक्ति का ज्ञान बताते हैं। भगवद्गीता में अनेक मार्ग बताए हैं, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है। ऐसा मार्ग किस लिए है? वास्तव में हम सबको शांति और सुख प्राप्त करने के लिए। हम सब शांति और सुख चाहते हैं। भगवद्गीता की शुरुआत में क्या हो गया था? अर्जुन एक बहुत ही बड़े संकट में पड़ गए थे। वो संकट केवल शारीरिक नहीं था, वो एक युद्ध करने वाले थे और युद्ध में उनके प्रतिद्वंद्वी जो थे वो बहुत महान योद्धा थे। बहुत वो कोई और व्यक्ति होता तो उसके लिए शारीरिक स्तर का संकट होता था वो, कि मेरी मृत्यु हो जाएगी इस युद्ध में। पर अर्जुन को वह बोध ही नहीं था। अर्जुन का संकट क्या था कि क्या मैं उचित कार्य कर रहा हूं, मुझे वास्तव में क्या करना चाहिए। अगर मैं किसी से युद्ध करता हूं और युद्ध में किसी की उनकी हत्या होगी या मेरी हत्या होगी, तो यह युद्ध करना क्या यह उचित कार्य है मेरे लिए? बहुत प्रश्न था अर्जुन के सामने। और भले ही हमें कोई बंदूक या तलवार उठा के युद्ध नहीं करना है, पर भगवद्गीता जो बता वगैरह वो क्या है, वो अर्जुन के अंदर जो भावनाओं का युद्ध हो रहा था, वह भावनाओं के युद्ध में कैसे विजय प्राप्त करके उचित कार्य करना है, उसका वर्णन भगवद्गीता के ज्ञान से किया गया है। तो वो भावनाओं का युद्ध जो होता है वो हम सबके हृदय में होता है। कभी हमको लगता है मुझे ये करना चाहिए, कभी वो करना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे जिससे कि मेरा कल्याण होगा और दूसरों के कल्याण में मदद कर सकता हूँ। तो वह ज्ञान भगवान भगवद्गीता में देते हैं। तो जो युद्ध है वह युद्ध केवल एक संदर्भ है। उसका जो अंतरंग भाव है भगवद्गीता का वो क्या है कि हम किसी भी परिस्थिति में हो, हम कोई भी पेशे में हो, कोई भी देश में हो, कोई भी उम्र के हो, हम सबको मुझे क्या करना है वह सवाल होता है। तो वह सवाल का जवाब कैसे प्राप्त करना है वह भगवद्गीता बताती है। तो भगवद्गीता में अनेक स्तर पे भगवान ने ज्ञान दिया है। और अभी इस श्लोक में बताते हैं भगवान कि मैं अभी सबसे श्रेष्ठ ज्ञान आपको दूंगा। सर्वगुह्यतमं भूयः
सर्वगुह्यतमं भूयः
शृणु मे परमं वचः
परमं वचः
यत्तेहं प्रियमाणाय दसवें अध्याय में ऐसे श्लोक है, शुरू में परमं वचः शब्द आते हैं। सॉरी, इष्टोऽसि मे दृढमिति
इष्टोऽसि मे दृढमिति
ततो वक्ष्यामि ते हितम्
ततो वक्ष्यामि ते हितम्।
तो भगवान बता रहे हैं सर्वगुह्यतमं भूयः सर्वगुह्यतमं, गुह्य मतलब जो रहस्यमय बात है जो सबको पता नहीं है, और तम मतलब सर्वश्रेष्ठ, जैसे अच्छा और अच्छा सबसे अच्छा, इंग्लिश में गुड बेटर बेस्ट कहते हैं, तो वैसे संस्कृत में होता है गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। गुह्य बात है और गुह्य बात है, सबसे गुह्य बात है। सर्वगुह्यतम भूय 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 मतलब पुनः बता रहा हूं मैं। पुनः क्यों? ये जो भगवान शुरू में परमम वचा ऐसे ही वचन भगवान ने दसवें अध्याय की शुरुआत में क्यों किए हैं? परम भूय भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। तो तभी भगवान ने बताया दसवें अध्याय में कि मैं मेरे परमं वचः बता रहा हूं। तो जो पहले बताया है वह मैं वापस दोहरा रहा हूं, क्यों? स्पष्ट हो जाए, कोई गलती न रहे इसमें आपके समझ में। तो शृणु मे परमं वचः, हे अर्जुन मैंने कई वचन किए हैं पर उसमें सर्वश्रेष्ठ सबसे महत्वपूर्ण वचन जो है वो बता रहा हूं। तो दो बार भगवान जो है वह जोर से बता रहे, क्या है? पहले गुह्यतमं बताया और फिर बाद में बताया है परमं वचः। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कोई परीक्षा होती है तो परीक्षा के पहले कोई शिक्षक होता है, वो बोलता है कि ये जो मैं बता रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसका मतलब क्या है? ये आपको समझना चाहिए, आपको याद करना चाहिए, ये आपके परीक्षा में आने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से भगवान दो बार बता रहे हैं। और उतना ही नहीं बता रहे हो क्या भाई, इष्टोऽस्मि दृढमिति, इष्ट आप मेरे लिए बहुत प्रिय हो, और कितने प्रिय हो, दृढमिति, दृढ़ मतलब क्या, दृढ़ संकल्प कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आप मुझे बहुत प्रिय हो। वास्तव में भगवान का हम सब के प्रति, हर एक के प्रति इतना प्रेम है कि वो प्रेम का कभी अंत नहीं हो सकता है। There is nothing that anyone can do that can ever stop Krishna from loving us. हमारे पास ऐसी शक्ति नहीं है कि हम कुछ भी कार्य करें, कर सके, हम ऐसा कार्य करें जिससे कि भगवान हमें प्रेम करना छोड़ देंगे। हम कितना भी बुरा कार्य करें, कितना भी घृणास्पद कार्य करें, भगवान कभी हमको त्यागते नहीं है, हमेशा वो हमें प्रेम करते हैं। उनका प्रेम का जो स्वरूप है वो कभी बदल सकता है। जैसे माता अपने बालक से प्रेम करती है हमेशा, पर बालक नटखट होता है, नादान करता है, तो फिर कभी डांटेगी, पर वो डांटने के पीछे भी क्या है, प्रेम ही है। तो इस भौतिक जगत में एक दूसरे व्यक्ति से प्रेम करता है, पर बहुत समस्या आ जाती है तो कभी वो प्रेम का रिश्ता टूट जाता है। पर भगवान कभी हमसे जो प्रेम का संबंध है वो तोड़ते नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ में रहते। मातृ प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय। आठवें स्कंद के तीसरे अध्याय में श्रीमद् भागवतम में गजेंद्र प्रार्थना करते हैं और वह कहते हैं, हे प्रभु आपका प्रेम कैसा है। मातृ प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय, मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, मुझे आप उद्धार किए संकट से। बड़े खतरनाक संकट में पड़ गए थे गजेंद्र, तो बोलते हैं प्रभु आप क्या है। तो कोई बोलेगा कि तुम तो तुम्हारे संकट में पड़े हो, तुम्हारे कर्म से संकट में पड़े हो, मैं तुम्हें मदद क्यों करूं। भूरी करुणाय, तो कि आप बहुत करुणामय है। मातृ पशुपाश प्रपन्न विमोक्षणाय मुक्ताय भूरी करुणाय, आप पहले मुक्त है, मैं बद्धा हूं, आप मुक्त हो, आप मुझे छुड़ा सकते हो, पर आप देखते नहीं हो कि पात्र है कि नहीं, आप करुणाय है, बहुत भूरी करुणा है, मतलब विशाल मात्रा में करुणा है आपकी, इसीलिए आप जरूर मुझे उद्धार करें। तो भगवान कहेंगे मैं तो बहुत जन्मों से तुम्हें अपने पास लाने का प्रयास कर रहा हूं, अभी मैं कितने समय तक प्रयास कर सकता हूं, तो तुम कभी सुनते ही नहीं है। तो नमो लयाय ओ लयाय, प्रभु आप कभी थकते नहीं हो, आप हमेशा सतर्क रहते हो। कृष्णा इज एवर वेटिंग, एवर विलिंग, एवर वर्किंग, हमेशा इंतजार कर रहे, हमेशा तैयार है और हमेशा प्रयास कर रहे भगवान। तो इष्टोऽस्मि दृढमिति, भगवान कहते तुम ये बहुत प्रिय हो। यू नो कृष्णा इज डिटरमिन्ड टू लव अस एंड वी आर डिटरमिन्ड टू फॉरगेट हिम, ये हमारा दुर्भाग्य है। क्या भगवान हमेशा प्रेम करते हैं पर हम क्या करते हैं, उनको नए नए पद्धतियां ढूंढते हैं जिससे कि उनको भूल जाए। वास्तव में कैसे है, अभी आजकल तंत्र ज्ञान से बहुत प्रगति हो गई है, अभी विज्ञान से प्रगति है, विज्ञान भी भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर कई बार क्या होता है, जितनी वैज्ञानिक प्रगति होती है उससे क्या होता है, नए नए साधन लोग निकालते हैं जिससे कि भगवान को भूल जाए। पहले टीवी पे एक चैनल था, अभी 500 चैनल आ गए, तो क्या है 500 पद्धतियां हो गई भगवान को भूलने की। तो हजारों वेबसाइट आ गए, तो हजारों पद्धतियां निकल गई भगवान को भूलने की। तो जीवात्मा जो है, जितना प्रयास भगवान को भूल के किसी न किसी तरह से कहीं सुख निकालने का प्रयास करता है, उसमें से थोड़ा अंश प्रयास भी भगवान की सेवा में लगाएगा तो बहुत आनंद मिल सकता है। फिर भी कितना भी जीवात्मा भगवान से दूर जाता है, पर भगवान क्या करते हैं, इष्टोऽस्मि दृढमिति, बहुत प्रिय है भगवान, कहते हैं। तो और क्या करते हैं, वो कहते हैं ततो वक्षामि ते हितम्, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत प्रिय हो इसीलिए तुम्हारे हित के लिए मैं बोल रहा हूं। ततो वक्षामि ते हितम्, हितम् आपके हित के लिए बोल रहा हूं। भगवान यहां पर बता रहे हैं कि मैं तुम्हारा ही कल्याण चाहता हूं और इसके लिए बता रहा हूं। तो अभी ये परमम वच क्या है, ये दो श्लोक में आएगी। ये दो श्लोक है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये एक महान आचार्य है जिन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं और भगवद्गीता पर उन्होंने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है। सारा अर्थ वर्षिणी उस किताब का नाम है, तो सार अर्थ का जो वर्षा करता है। तो उसमें वो एक तुलना बताते हैं कि भगवद्गीता क्या है, वो एक रत्न का डब्बे के समान है। तो वो क्या है, एक बहुत ही सुंदर अच्छा डब्बा है, उसके अंदर बहुत ही मौल्यवान रत्न है। तो अभी रत्न का वो डब्बे का एक ऊपर का ढक्कन होता है और नीचे का एक विभाग होता है और बीच में खजाना होता है। तो उसी तरह से कहते हैं कि भगवद्गीता के तीन भाग है, एक पहला भाग है पहले 6 अध्याय, फिर आखिरी के 6 अध्याय और फिर बीच के 6 अध्याय। तो जो पहले 6 अध्याय है वह एक ढक्कन के समान है, एक नीचे का भाग है, उसमें कर्म के बारे में बताया है, कर्म से धीरे धीरे व्यक्ति भक्ति तक कैसे आ सकता है। और जो ऊपर के 6 अध्याय है, जो मतलब जो 13वें से 18वें अध्याय, वो ढक्कन है। अभी वो ढक्कन क्या है, वो ज्ञान के बारे में बताया, ज्ञान मार्ग के बारे में बताया है। तो मतलब क्या है, ज्ञान से व्यक्ति भक्ति तक कैसे पहुंच सकता है, उसका वर्णन किया है भगवान ने। और इन दोनों के बीच में 7वें अध्याय से 12वां अध्याय जो है वह भक्ति का ज्ञान है। तो वो वास्तव में असली जेवर है, असली रत्न है, बहुत मौल्यवान है। पर अगर ऐसा रत्न का डब्बा है, कोई बाहर से देखता है, कोई सोचेगा इसमें क्या है पता नहीं, कौन परेशानी लेगा, कौन खुल के देखेगा। तो व्यक्ति तो लोगों को आकर्षित करने के लिए क्या किया गया है, वो डब्बे के ढक्कन पे जो अंदर के रत्न है उनमें से 2 रत्न वो ढक्कन पे लगाए। तो क्या होता है, अच्छा ये रत्न यहाँ पे है, इसके अंदर क्या मैं देखता हूँ। तो उसी तरह से ये भगवद्गीता के अंत में जो 65वां और 66वां श्लोक है वो क्या है, वो भक्ति के रत्न है। वह भगवान ने अंत में बताया है ताकि स्पष्ट हो जाए और उसका जो उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए और उसका अध्ययन करने के लिए आकर्षण हो जाए। तो हम 65वां श्लोक देखते हैं। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। तो भगवान हमें बता रहे, तो पहले विशेष जो बताया कि सबसे गुह्य ज्ञान में बताने वाला हूं आपको, आपको क्या करना चाहिए वो बताते हैं। मन मना, आप आपका मन मुझ में लगाओ। और किस तरह से लगाओ, भव मद भक्तो, मेरा भक्त बन के लगाओ। कई बार क्या होता है, हम किसी चीज में मन लगाते हैं पर उस चीज में हमारा रुचि नहीं होता है। कोई विद्यार्थी होता है, अगर परीक्षा आने वाली है तो पढ़ाई करता है, तो मन पढ़ाई में लग रहा है, लगाया हुआ है, पर सोच क्या रहा है, ये परीक्षा खत्म हो जाएगी तो फिर छुट्टी आ जाएगी, फिर मैं खेलने जाऊंगा। या फिर कोई कॉलेज में विद्यार्थी सोचे कि परीक्षा हो जाएगी, फिर नौकरी मिल जाएगी, फिर बहुत पैसा आ जाएगा मेरे पास। तो क्या होता है, हम एक चीज में मन लगाते हैं पर हमारा जो आकर्षण है किसी और चीज की ओर। तो भगवान कहते हैं उस तरह से नहीं, हमें भगवान में हमारा मन लगाना है। और किस तरह से मन लगाना है, भव मद भक्तो, हृदय उनको अर्पण करना है, उनके भक्त बनना है। और मद्याजी माम नमस्कुरु, मद्याजी आप मुझे अपनी पूजा करो, आप मेरे प्रणाम करो। तो यहां पे कैसे बताया है कि हमारा जो अस्तित्व है, हमारा शरीर होता है, हमारा मन होता है, हमारी वाणी होती है और हम स्वयं होते हैं। तो हम ये सब भगवान को अर्पण करना है। तो मन मना मतलब हमारा मन लगा दो, मद्याजी मतलब क्या, ऑफर होमेज, होमेज मतलब क्या, गुणगान करना, आदर देना। और नमस्कुरु तो वो वचन से किया जाता है, और नमस्कुरु मतलब हम शरीर से प्रणाम करते हैं। तो इस तरह से भगवान क्या बता रहे हैं, आप आपका सर्वस्व मुझे अर्पण कर दो। ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, मामे वैश्यसि, आप मेरे पास जरूर आओगे। और वास्तव में यही श्लोक भगवान ने पहले बताया है 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में, जिसे मैं बताया था अंदर के रत्न जो है वो बाहर दिखाए हैं, उसका झलक दिया है। तो उस श्लोक में और इस श्लोक में हम फर्क क्या है वो देखते हैं। वो जो श्लोक है, दो पंक्तियां और तीसरी पंक्ति का एक भाग बिल्कुल एक ही है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त वैवम आत्मानं मत्परायणः। यह 34वां श्लोक है 9वें अध्याय का। यहां वहां पे बताया गया, मामे वैश्यसि, आप मेरे पास आओगे, क्या करना है, इस तरह से युक्त वैवम, इस तरह युक्त हो जाओगे आप, इस तरह से कार्यरत रहोगे तो आत्मानं मत्परायणः, आपका जो आत्मा है, आपका सर्वस्व है, मेरे परायण हो जाएगा। और आप इस तरह से मेरे परायण हो जाओगे तो जरूर मेरे पास आ जाओगे। और यहां पे क्या बता रहे, मामे वैश्यसि, वहां तक एक ही है, फिर सत्यंते मैं सत्य बोल रहा हूं जरूर आओगे आप। प्रतिजाने प्रियोसि मे, प्रतिजाने मैं घोषणा कर रहा हूं। क्यों घोषणा कर रहा हूं? प्रियोसि मे, आप मेरे बहुत प्रिय हो। साधारणतया कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कभी वादा करता है तो फिर अगर वो धंधे की बात है या स्वार्थ की बात है तो फिर क्या होता है, वो वादा करता है, बाद में वादा पूरा करने की इच्छा नहीं, इच्छा नहीं होती है। पर भगवान बोलते हैं कि हमारा संबंध है वो स्नेह का है, अगर हम प्रेम में किसी से वादा करते हैं तो जरूर उसको पूरा करते हैं। तो प्रियोसि मे भगवान, सत्यंते सत्य बोल रहा हूं मैं, और प्रतिजाने, प्रतिजाने मतलब घोषणा करता हूं। तो क्या होता है कि अगर दो व्यक्ति मिलते हैं और किसी के कोई और गवाह नहीं है और वादा करते हैं तुम मेरे लिए ये कर दो और फिर मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तो वो व्यक्ति वो काम कर देता है और फिर ये होता है ये अभी उसके जिसको जिसने जिन्होंने वादा किया है, एक व्यक्ति बोलता है तुम मेरे लिए काम कर दो मैं तुमको ये इनाम दे दूंगा, तो व्यक्ति काम कर देता है, बाद में इनाम की बात आती है मैंने कब वादा किया था, ऐसे बोल सकता है। इसीलिए साधारण तो क्या होता है, जब वादा होता है तो लोग बोलते हैं गवाह होना चाहिए, तो इसने गवाह ये वो गवाह थे ये सब हुआ था। तो भगवान कहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ वो गुह्य दे रहा हूँ, पर ये जो मैं घोषणा कर रहा हूँ ये क्या है, प्रतिजाने, मैं खुल्ला खुल्ला घोषणा कर रहा हूं। पहले भगवान ने नवे अध्याय में यही शब्द इस्तेमाल किया था प्रतिजाने, कौन्तेय प्रतिजाने नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा, कभी विनाश नहीं होगा, हे अर्जुन इसकी घोषणा आप करो। तो अर्जुन को तभी बोल रहे थे भगवान आप घोषणा करो, पर भगवान ही बोल रहे मैं खुद घोषणा करता हूं। तो यहां पे भाव क्या है, भगवान बोलते हैं कि ये बिल्कुल सत्य है कि अगर आप ऐसे करोगे तो आप मेरे पास आ जाओगे। और भगवान के पास आने का क्या फायदा है कि भगवान सनातन है, भगवान सनातन हमेशा सुखी रहते हैं, और जो भगवान के सानिध्य में जाते हैं वह भी हमेशा सुखी हो जाते हैं। तो 34वें श्लोक में नवे अध्याय के और 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में फर्क क्या है, वो वहां पे भगवान क्या है जो भक्त की जिम्मेदारी पे जोर दे रहे कि तुम ऐसे 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 करोगे तो तुम मेरे पास आ जाओगे। मां में वैशिष्य युक्त हो आत्मान मत पर, ऐसे युक्त हो जाओ, इस तरह से परायण हो जाओ तो मेरे पास आ जाओगे। पर यहां पे भगवान क्या बोल रहे हैं, यहां पे हाँ तुम ये करो पर मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि मैं तुम्हें मेरे पास ले आऊंगा। तो वहां पे भगवान भक्त की जिम्मेदारी बोल रहे हैं, पर यहां पे भगवान बोल रहे हैं मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं ये आश्वासन देता हूं तुम्हें तो कि तुम मेरे पास आ जाओगे। तो कभी कभी क्या होता है, लोगों को लगता है कि भगवद्गीता बहुत सारा तत्व ज्ञान है इसमें, और फिर वो होते हैं कि भागवतम पढ़ते हैं महाभारत पढ़ते रहो उसमें कहानी अच्छा लगता है। तो भगवद्गीता में तत्व ज्ञान जरूर है, पर तत्व ज्ञान क्या है, उसके पीछे दो व्यक्ति है और दो व्यक्तियों में बहुत स्नेह का संबंध है, प्रेम का संबंध है, और उनके भावनाएं जब हम समझते हैं तो फिर तत्व ज्ञान है उसको हम और अच्छी तरह से देखते हैं। भगवद्गीता इज नॉट जस्ट फिलोसफी, इट इज लव प्रेजेंटेड थ्रू द मीडियम ऑफ फिलोसफी। क्या है, प्रेम के माध्यम से, तत्व ज्ञान के माध्यम से प्रेम का संदेश दिया जा रहा है। तो भगवान बोलते हैं कि आप मेरे भक्त बन जाओ। तो अभी पहले भगवान ने बताया कि आप एक करो, ये मैं सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दे रहा हूं, आप ऐसे करो। तो अभी अर्जुन को सवाल आता है कि शास्त्रों में इतनी सारी चीजें बताई है और आपने भी बहुत सारी चीजें बताई है, आपने कर्मयोग बताया, ज्ञान योग बताया है, देवी देवताओं की पूजा के बारे में बताया है, ये सब चीजें बताई है अलग अलग चीजें, तो अभी उनमें से मुझे क्या करना चाहिए, अभी ये सब भी तो उचित, ये भी सब अच्छे ही, ये सब भी धर्म है। तो भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं, तो अभी इसमें संदेश दे दिया और अभी बाकी सबको के बारे में क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य, मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि हाँ अलग अलग प्रकार के धर्म है पर सर्वधर्मान परित्यज्य, इन सबका त्याग कर दो। अभी सर्वधर्मान परित्यज्य अगर ऐसे बोलेगा कोई तो क्या मतलब है, कि धर्म त्याग करके अधर्मी बन जाओ, नहीं, वो पराधर्म स्वीकार करो। क्या पराधर्म है, माम एकम शरणम व्रज, आप केवल मेरे शरण में आ जाओ, मेरे शरण में आ जाओ। तो शास्त्रों में अनेक चीजें बताई है, पर शास्त्रों का जो अंतिम संदेश है वह क्या है? वह भगवान की भक्ति है। तो अनेक शास्त्रम शास्त्र ऐसे शास्त्र बताया गया, सुभाषित आता है कि शास्त्रों शास्त्र अनेक है, उनका अर्थ हर एक श्लोक का अर्थ भी अनेक है। तो अनंतम शास्त्रम बहुवेदितव्यम शीघ्रम च कालम बहुव्यम च विघ्नम। क्या है? शास्त्र अनेक है, उनके अर्थ बहुत विशाल है, हमारे पास समय बहुत कम है, और जो समय है भी उसमें हमारा चित्त इधर उधर घूमते रहता है। तो इसमें क्या है? तत्सार भूतम उपासितव्यम। तो इसीलिए क्या है? उसका सार समझना है और उसकी उपासना करनी है। भगवान यहाँ पे सार बता रहे हैं, क्या? मामेकं शरणं व्रज, आप शरण में आ जाओ, मेरे ही शरण में आ जाओ, और मैं आपको संभाल लूंगा, और कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो धर्म के भी अनेक स्तर होते हैं, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ स्तर क्या है? भगवान की भक्ति करना।
तो व्रज,
व्रज ये शब्द के कई अर्थ है। एक है जाओ, जाओ मतलब क्या? अभी भगवान तो अर्जुन के सामने ही है, तो मामेकं शरणं व्रज बोलना चाहिए आओ। तो जाओ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान हमें बता रहे हैं ये व्रज का एक और अर्थ है, व्रज का अर्थ है वृंदावन। तो जो व्रज की व्रज के भक्त वृंदावन के भक्त है, व्रज के भक्त है, उनमें से सर्वश्रेष्ठ है वृंदावन की गोपियां। तो उन्होंने ये श्लोक दर्शाया था, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। माम एक कैसे क्या? जब भगवान ने अपनी बांसुरी बजाई और उन्होंने रासलीला के लिए गोपियों को आमंत्रण किया, तो गोपियां हर एक प्रकार के धर्म के अनुसार अपने कार्य कर रही थी। वो कोई गोपियां गृहणियां थी, कुछ गोपियां अविवाहित थी, तो अपने अपने घरों में, पिता के घर में हो या किसी अपने रिश्तेदारों के घर में कुछ कर्तव्य कर रही थी, और सब कर्तव्य महत्वपूर्ण है, पर जब भगवान बुलाते हैं, भगवान की सेवा जो है सबसे महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने वो सब त्याग दिया। जैसे भगवान ने बुलाया तो क्या है? पति सुतन भया भ्रातृ बांधवान अति विलांघ्यते अंत्यच्युतागतः गतिविदस्तव उद्गीत मोहितः कितव योषितस् कस्य चिन्निषि। तो गोपियां बताते हैं गोपी गीत में दशम स्कंध के 31वें अध्याय में, पति सुतन भया भ्रातृ बांधवान अनेक प्रकार के रिश्तेदार थे, बोले थे मत जाओ मत जाओ मत जाओ, पर अति विलांघ्यते वो सबको छोड़ के वो तुरंत चले गए, अंत्यच्युतागतः हे अच्युत आपके शरण में आ गए हैं। क्यों? गतिविदस्तव उद्गीत मोहितः, कि आपके जो वेणु है उसका गीत है, उसको सुन के हम आ गए। यहाँ पे बता रहे हैं गोपिया, ये जो वेणु का गीत था उद्गीत, उद्गीत मतलब बहुत जोर से आवाज होता। तो वास्तव में भागवतम में दूसरी जगह पर बताया गया है कि वेणु का जो संगीत है वो बहुत मधुर है, बहुत ही मधुर है, पर यहाँ पे उद्गीत क्यों बताया गया है? बहुत ही ऊंचे ध्वनि का से बताया गया, क्यों? क्योंकि वो गोपियों के लिए वैसे था। जब कोई व्यक्ति, अभी कोई माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, तो वो बच्चा दूसरे कमरे में होगा, माँ कोई रसोई घर में कुछ काम कर रही है, पर वो बच्चा थोड़ा भी आवाज करता है तो क्या होता है? बाकी सारे आवाज सुने, ये आवाज सुने देता है, क्योंकि हमें प्रेम है तो पूरा जो चेतना होती है, संवेदनशीलता होती है, इसे एक जगह पर जागृत होती है। तो उसी तरह से गोपियों के लिए भगवान का जो वाणी थी वो भगवान की वेणु की ध्वनि थी, उद्गीत मोहितः, उससे वे आकर्षित हो गए और बाकी सब छोड़ के चले आ गए। तो इस तरह से माम एकम शरणम व्रज, तो आप मेरी शरण में आ जाओ। तो मेरी शरण में आ जाओ मतलब हमारे लिए क्या करना है? हमें सारे कर्तव्य छोड़ के आने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कलयुग में बड़े आसान साधन दिया है कि हम उनके नाम का जप कर सकते हैं, कि भक्तों के संग में आ सकते हैं और हम भक्ति कर सकते हैं। तो ऐसे करने से क्या होगा? भगवान बोलते हैं, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। जो भी पाप हो गए, अगर कोई कहता है कि अरे मेरा ये कर्तव्य है, मैं ये कर्तव्य नहीं छोड़ दूंगा, तो क्या होगा? अगर कुछ पाप होगा तो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें उससे मुक्त कर दूंगा। वास्तव में अगर कोई भगवान के शरण जाता है तो कोई पाप आता ही नहीं है, भगवान के शरण जाना ये सबसे मंगलमय कार्य है। पर भले ही कुछ पहले भी किसी ने पाप किया है, तो भगवान कहते हैं मोक्षयिष्यामि, मैं इसे मुक्त कर दूंगा। तो सातवें अध्याय में जब भगवान वर्णन कर रहे हैं भक्ति के बारे में, तो तभी वे कहते हैं 27वें श्लोक में, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढव्रतः। बोलते मेरा भजन करना है तो क्या है, अंतगतम पापम, आप पाप से मुक्त हो जाओ, फिर आप मेरा भजन अच्छी तरह से कर सकते हो। तो वहां पे भगवान बता रहे सत्य, पर यहाँ पे भगवान का जो हृदय है वो करुणा से और करुणा उनके हृदय से पूरी बाहर आ रही है। वो कह रहे कोई बात नहीं, पाप होगा तो भी आती है, आप सिर्फ मेरे पास आ जाओ, अहम तो आप सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो ये भाव क्या है, अभी छोटा बालक होता है, वो बड़ा हो रहा होता है, तो क्या होता है, अभी शरीर की जो क्रिया होती है वो माता उसको सिखाती है कि अभी ये आप अपने कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए, आप बाथरूम में शौचालय जाके वो कार्य करना चाहिए। पर वो कभी कभी बालक अनजान होता है, नादान होता है, ध्यान नहीं देता है, तो अपने कपड़े गंदे कर देता है। तो फिर माँ नाराज होती है, माँ बोलती है कि तुम पहले साफ हो जाओ फिर मेरे पास आओ, जब तक साफ नहीं होते मेरे पास मत आओ। और अभी वो छोटा बालक है, बोलता है कैसे साफ होना भी पता नहीं है, तो असहाय भाव से माँ के पास आओ, आओ मैं तुम्हें साफ कर देती हूँ। तो उसी तरह से पहले भगवान बोल रहे पहले साफ हो जाओ, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा। पर जब भक्त असह्य देखता है तो भगवान अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सिद्ध कर दूंगा, आप चिंता मत करो। मा शुचः, आप चिंता मत करो, भय मत करो, शंका मत करो। वास्तव में शंका ये क्या है, शंका यह हमारे आध्यात्मिक प्रगति में दो दीवार आते हैं। अगर मैं यहाँ पे हूँ और भगवान यहाँ पे, तो दो प्रकार के दीवार आते हैं, एक है वासना और दूसरी है शंका। हमारा जो स्थूल शरीर है, यह स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर में मन और बुद्धि होता है। तो मन से एक दीवार आती है, एक व्यक्ति आता है, वह है वासना, और बुद्धि से एक व्यक्ति आता है, वह है शंका। तो क्या है, भगवान कह रहे हैं कि जो भी आपकी वासना आ रही है मैं उससे मुक्त कर दूंगा आपको, पर आपकी जो शंका है उसको आप छोड़ना चाहिए। मां शुचः, आप उसके नियंत्रण में मत जाओ। तो आप शरणागत हो जाए, सर प्रत्यज मां एकम शरणम व्रज। अभी शरण का अर्थ क्या है, शरणागत होना मतलब क्या, अगर कोई विद्यार्थी है बोलता है अभी मेरे कल परीक्षा आ रही है मैं शरण जाता हूँ भगवान के, क्या है मैं कुछ भी पढ़ाई नहीं करूंगा कैसे जाऊंगा, मैं शरणागत हूँ। शरणागति ऐसे नहीं है, अर्जुन भी शरणागति मतलब, अब अर्जुन शरणागत जाते हैं, पर क्या है शरणागति मतलब जिम्मेदारी स्वीकार करना। शरणागति का अर्थ क्या है, जब हम अर्जुन के श्लोक पे आएंगे, अर्जुन 73वें श्लोक में जवाब देते हैं तभी हम देखेंगे। तो अभी यहाँ पे भगवान ने अपना संदेश पूरा कर लिया है। तो शास्त्रों में कई बार जब संदेश बताया जाता है उसके बाद में फलश्रुति होती है, फलश्रुति मतलब जो बताया गया है उसकी महिमा क्या है। तो अभी बताते हैं भगवान 77वें श्लोक शुरू करते हैं, वो क्या बोलते हैं अभी सबसे पहले, इदं तेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च मां योऽभ्यसूयति। तो ये जो ज्ञान है, पहले बताया था 63वें श्लोक 64वें श्लोक के गुह्य ज्ञान है, तो इसीलिए भगवान बताते सबको मत बताओ। इदम ते, ये जो ज्ञान है किस किस को मत बताओ, तपस न तपस्काय, जो तपस्या नहीं करते हैं, जो धीर नहीं है उनको मत बताओ, ना अभक्ताय, जो भक्त नहीं है उनको ये ज्ञान मत बताओ, कदाचन कभी मत बताओ ज्ञान, न चा शुश्रूषवे वाच्य, जो जिनमें सेवा भाव नहीं है, शुश्रूष सेवा भाव नहीं है उनको मत बताओ, न च माम योऽभ्यसूयति, और जो मेरी ईर्ष्या करते हैं उनको ये ज्ञान मत बताओ। अभी ये सुनेगा तो बचा कौन है, फिर भी ऐसे ही तो लोग दुनिया में हैं, ईर्ष्या करते हैं, सेवा भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, तपस्या कितने लोग करते हैं। तो अर्जुन के मन में सवाल आया किसको बताए फिर, वास्तव में क्या है यहाँ पे भावना का भाव, भावना का ये वाक्य है। कैसे है, अगर कोई पिता है, अभी पिता बहुत अमीर है और उनकी जो संपत्ति है उनका खजाना है, और खजाने के बिल्कुल अंदर के विभाग में बहुत ही परम मौल्यवान जेवर कोई रत्न है, इतने मौल्यवान है कि सारे बाकी राष्ट्र की संपत्ति उससे भी ज्यादा है, तो बड़े ही मौल्यवान रत्न है। तो कभी अपने पुत्र के प्रति बहुत स्नेह होता है तो वो खजाना खोलते हैं और दिखाते हैं ये सब रत्न है। और अभी जब वो रत्न स्नेह के कारण बताते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि जो स्नेह ये बहुत मौल्यवान है, तो तुम्हारे जो भाई बहन है उनको इसके बारे में मत बताओ। वो क्या है, ये जो इतने मौल्यवान है अगर उसका मौल्य समझ भी नहीं आएगा तो फिर उसको लापरवाही से ले लेंगे। तो वो जो रत्न है ऐसे नहीं कि भगवान ज्ञान छिपा के रखना चाहते, पिता जो है जो भी उनके पास खजाना है वो किसके लिए, अपने संतान के लिए ही है। पर उनकी इच्छा क्या है कि उनकी जो संतान है वो परिपक्व हो जाए, जिम्मेदार बन जाए, जिम्मेदार बनने के बाद उनको वो खजाना दे सकते हैं। तो इसीलिए भगवान क्या बता रहे अर्जुन को कि हे अर्जुन ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ यह बहुत ही गुह्य ज्ञान है, और जो अभी तक परिपक्व नहीं है वो ये ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए उनको ज्ञान मत देना। तो भगवान की ये पहले बताते हैं कि ज्ञान मत दो, पर अभी अगले श्लोकों में बताएंगे कि ये ज्ञान का प्रचार करो। तो मतलब क्या है, भगवान की इच्छा है जरूर ये ज्ञान का प्रचार हो, पर क्या है साथ साथ वो प्रचार करने के साथ साथ क्या है कि लोगों की पात्रता भी होनी चाहिए। जैसे माता जब बताता पिता की इच्छा क्या होती है कि मेरी शादी जायदाद है सारा खजाना है मेरे संतानों को दे दूं मैं, पर वही जो पिता सारे अपने संतानों को देना चाहते हैं वह क्या करते हैं, जब वो बालक होगा 5 साल का 10 साल का तभी नहीं देते हैं। क्यों, क्योंकि तभी तक बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है कोई कोई बहुत अमीर माता पिता होते हैं वह जब अपनी व्हाट इज विल वसीयत अपनी जब वसीयत बनाते हैं तभी वो ऐसे लिखते हैं कि वसीयत में कि ये जो पैसा है ये पैसा मेरे पुत्र का ही है मेरे बच्चों का ही है, पर वो एक साल में इतना ही हर साल में एक एक साल में इतना इतना पैसा निकाल सकते, और वो ऐसे बोलते हैं अगले 5 साल तक अगले 10 साल तक अगले 15 साल तक वो इतना इतना पैसा निकाल, सब पैसा उनका ही है पर वो इतना ही निकाल सकते। वो क्या है क्योंकि पैसा आ जाता है नशा आ जाता है, क्या होता है फिर कैसे खर्च कर देते पैसे समझ में नहीं आता है, फिर बाद में गरीबी आ जाएगी पछतावा हो जाएगा, तो फिर क्या है इसलिए संरक्षण रखते। तो उसी तरह से भगवान चाहते हैं कि ज्ञान सबको दे, पर वो ये भी चाहते हैं कि जीवात्मा है वो परिपक्व हो जाए, वह समझे कितना मौल्यवान ज्ञान है। इसलिए आगे बताते हैं भगवान कि ज्ञान सबको मत दो, पर फिर भी वो कहते हैं कि ज्ञान का प्रचार करना ये बड़ा महान कार्य है। तो बताते हैं अगले श्लोक में, यदम परमं गुह्यं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयि परां कृत्वा
भक्तिमयि परां कृत्वा
मामे वैश्यस्य संशयः। तो यदम परमं गुह्यं इदं परमं गुह्यं, ये जो ज्ञान है परम गुह्य ज्ञान है, सर पहले बताया था गुह्य तमाम वही बता रहे हैं परम गुह्य ज्ञान है। और अगर मत भक्तेश विधास्यति तो किसको आप प्रदान करो, मेरे भक्तों को प्रदान करो। मतलब क्या है कि जो अगर भक्त नहीं है जिनके भक्ति के अनुकूल है, भक्ति भगवान से ईर्षा करता है, भगवान से ईर्षा मतलब क्या कि भगवान की महिमा सुन के उसको लगता है भगवान इतने बड़े क्यों है मैं बड़ा हूं, तो इस तरह से भाव होता है, तो भगवान की महिमा सुनने से उसका भगवान के प्रति अपराध भाव और बढ़ जाएगा। तो जो भगवान के प्रति अनुकूल जिनका भाव है उनको ये ज्ञान दो, मत भक्तेष्वभिधास्यति, और अगर वो ऐसे करता है तो क्या होगा, भक्तिमयि परां कृत्वा, ऐसा व्यक्ति मेरी परा भक्ति प्राप्त करेगा, मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा, अनेक शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा उसके बाद